چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہے، اڑ چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہے، نہ رکے گا یہ کاروان، دور ہم سے نہیں اب آسمان، ہے قدم سے قدم مل چلے، آپ ہیں ساتھ میں جب چلے، ہے امنگ ہے اللہ، ایک نئی سوچ، نیا وشواس، ایک نئی سوچ، نیا
ہاتھوں کی لکیروں سے میں کبھی الجھا نہیں، ہاتھوں کی لکیروں سے میں کبھی الجھا نہیں، مجھے معلوم ہے تقدیروں کا لکھا بھی بدلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہماری مانیتائیں، بلیف سسٹم اور سوچ بدل رہی ہے، اس کارکرم کے ذریعے جب ہمیں ترکپورن ریتی سے، ویگیانک ریتی سے صحیح گیان مل رہا ہے۔ نمسکار، میں ہوں امت وادھوا، نئی سوچ نیا وشواس کارکرم میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی کڑیوں میں ہم نے برہما کماری سنستھا کے ساتھ جڑ کر آدھیاتم، پرماتما اور ان کے کرتویوں کے وشے میں جانا، ساتھ ہی ساتھ اس سنستھا کے پرتی ہمارے من میں جو بھرانتیاں موجود تھیں ایک ایک کر کے ان کا بھی سمادھان ہمیں پراپت ہو رہا ہے۔ لیکن کھان پان سمبندھت کچھ ایسے پرشن ہیں جن کا اتر میں سمجھتا ہوں آپ بھی ضرور جاننا چاہیں گے، اور اس وشے پر چرچا کرنے کے لیے آج برہما کماری سنستھا سے ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ہوں گے جن کے جیون میں آدھیاتمکتا اور ویوہارکتا کا سنتولن اسپشٹ جھلکتا ہے۔ انہوں نے آدھیاتمکتا کو اپنے پیشے سے جوڑ کر سوئم کا اور جن جن کا کلیان کیا ہے۔ آئیے اس وشے پر چرچا کرنے کے لیے ہم اپنے بیچ میں آمنترت کرتے ہیں گلوبل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ماؤنٹ آبو سے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انٹینسوسٹ آدرنی بھراتا ڈاکٹر سچن جی کو۔ نئی سوچ نیا وشواس کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، یہ ہمارا سوبھاگ ہے کہ آج ڈاکٹر سچن ہمارے مدھیہ وراجمان ہیں، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ان کی اپستھتی سے کھان پان سے سمبندھت ہماری جو بھی دویدھائیں ہیں ان کا سمادھان ہمیں اوشیہ ملے گا۔ لیکن کارکرم کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں بھراتا جی کے جیون کی کچھ جھلکیاں اور جانتے ہیں ان کے سفل جیون کے رہسیوں کے بارے میں۔
ایک سادھارن سے پریوار میں جنمے ڈاکٹر سچن بچپن سے ہی پڑھائی میں اتم شرینی کے چھاتر تھے۔ مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ نام کی مہاتما گاندھی کی کتاب پڑھنے کے بعد ان کا رجحان آدھیاتمکتا کی طرف بڑھ گیا، جس کارن انہوں نے کئی دھارمک ستھلوں کی یاترائیں بھی کی۔ ایم بی بی ایس کی پڑھائی میں گولڈ میڈل پراپت کرنے کے پشچات انہوں نے وردھا رورل ہاسپٹل میں میڈیکل پریکٹس شروع کی، لیکن پربھو ملن کی پیاس انہیں ویراگ ایوم سنیاس کی اور آکرشت کرتی تھی۔ سن 2003 میں وہ اراولی کی وادیوں میں استھت برہما کماریز کے شانتیون پریسر میں آیوجت ایک کارکرم میں شامل ہوئے۔ وہاں ان کو وشال پرماتم پریوار کی الوکتا نے کافی آکرشت کیا تتھا راج یوگ دوارا انہیں اسیم شانتی کا انوبھو ہوا، جس نے ان کے جیون کو ایک نئی دشا دی۔ مانوتا کی ڈبل سیوا کرنا اب ان کے جیون کا لکش بن گیا۔ 15 دسمبر 2003 سے گلوبل ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے روپ میں بھی سیوا دینے لگے، جہاں جسمانی چکتسا کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایشوری پریم، شانتی ایوم شکتی کا انوبھو بھی کرانے لگے۔ انہوں نے انیکوں سماج سیوی کاریوں کی پہل بھی کی، کبھی تو انہیں صفائی ابھیان کرتے ہوئے پایا جاتا، तो कभी आपदाग्रस्तों की मदद करते हुए, गरीबों और दुखी मनुष्यों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उन्होंने सदा ही उनकी मदद की है। परमात्मा प्रेम की शक्ति से सर्व को स्वस्थ कर रहे डबल डॉक्टर भ्राता सचिन वास्तव में सभी के लिए एक प्रेरणा स्तंभ हैं।
भ्राता जी, फिल्म भले ही शॉर्ट है लेकिन आपने किस प्रकार से अपने जीवन में ऊंचाइयां छुई हैं ये सब बताती है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर हैं आप, किस प्रकार से आध्यात्म ने आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद की है?
एक चिकित्सक के जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे कि जिस तरह का जीवन है चिकित्सक का, उसमें वो बहुत बिजी रहता है, सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देखते रहता है। बाहर के अगर आप चिकित्सक देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, तो सुबह से लेकर रात तक कभी ओपीडी देखना होता है, फिर उनके वार्ड्स के पेशेंट्स देखने होते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स देखने होते हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं उसमें। और इस तरह के जीवन जो वो गुजारते हैं उसमें उनके अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता, उनके अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में ये कहूंगा कि चिकित्सक बनने से पहले से ही मेरे जीवन में ये था कि मुझे विश्व के जितने लोग हैं उन सब की सेवा करनी है। जैसे कि कहा जाता है ना, बचपन में हम जो भी चीज देख लेते हैं या सुन लेते हैं उसका बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे याद है कि कभी मैं कहीं जा रहा था और एक बार कहीं पढ़ लिया, विवेकानंद जी ने कहीं लिखा था कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। मतलब केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो तभी से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं सबकी बहुत सेवा करूं, अपने लिए मेरा जीवन ना हो बल्कि मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। और यहां तक कि जबकि मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी के साथ नागपुर में जब मेडिकल कॉलेज के एडमिशन लेने गया था, तो एक तरफ एडमिशन की प्रोसीजर चालू थी और अचानक घूमते घूमते मैं हॉस्पिटल में चला गया। और हॉस्पिटल में जब गया नागपुर में, तो देखा वहां पर एक वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स और इतना उनका वो जो दुख का जो दृश्य मुझे दिखा, उसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और तभी से मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन को इन मरीजों के लिए समर्पण करना है। जैसे कि मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूं, फिर तो डॉक्टर बना और उसके बाद में मैं कहूंगा कि एक भगवान कौन है ये जानने की खोज मेरे जीवन में बचपन से थी और वो खोज बहुत तीव्र हो गई उसके बाद, तो और ज्यादा तीव्र हो गई। मैंने इस संस्थान से जुड़ने से पहले बहुत अन्य कई संस्थानों में मैं गया, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स में मैं गया, और वहां से ही मेरे मन में जैसे कि वो अध्यात्म का बीज था। और फिर जब जैसे डॉक्टर बना तो मैंने देखा कि ये स्पिरिचुअलिटी और मेरा जो प्रोफेशन है इसमें, तो मैं सोचूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है। और इससे ही मतलब ऐसा है कि जो मरीज जो आता है उसका हम में बहुत विश्वास बैठ जाता है
जी।
ये एक, क्योंकि देर इज समथिंग नोन एज लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ हीलिंग। पेशेंट उसी से ठीक होता है जिसके ऊपर उसका विश्वास है। आपने सुना होगा फेथ हीलिंग, जो गांव में झाड़ फूक करने वाले भी ठीक कर देते। कैसे ठीक करते हैं? अगर साइंटिफिक रीति देखा जाए तो उसमें तो कुछ है नहीं खास, फिर भी लोग उससे ठीक होते हैं। जैसे आपने बाइबल का उदाहरण सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट आया है, उसके सामने एक अंधा व्यक्ति है, वो पूछता है उससे कि डू यू बिलीव दैट आई कैन क्यूर यू, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं? वो अंधा व्यक्ति कहता है कि यस लॉर्ड आई बिलीव दैट यू कैन क्यूर मी। और वो कहता है कि बी दाउ हील्ड, कि तुम्हारा, और उसको बाद में वो कहता भी है कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हीलिंग पावर पेशेंट्स के अंदर ही है। डॉक्टर कोई हीलिंग नहीं कर रहा है, वो पेशेंट खुद ही हील होता है अपनी ही मन की शक्ति से, परंतु हम उस शक्ति को जागृत करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है तो वो अपने दुख दर्द लेकर आता है डॉक्टर्स के पास, तो जैसे कि उसमें एक निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे उसमें दुख और दर्द की एनर्जी होती है, वो अपनी दुविधाएं, अपना दुख सब कुछ लेकर आता है। वो केवल एक शारीरिक रीति से ही बीमार नहीं होता बल्कि वो मानसिक रीति से भी बीमार होता है। ऐसे ही कई मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने तो ऐसे सोच रखा है कि जब ये ऐसी उनकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, जैसे उनके मन में ये बैठ चुका है। पर जब हम हमारे पास आते हैं और हम उसको अध्यात्म के बारे में बताते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके बाद में उसमें एक नया उमंग, नया उत्साह जागृत होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह मैंने देखा है कि आध्यात्मिकता का एक मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज्यादा उपयोग है। और खासकर मैं तो अपने लिए कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ये मेडिकल प्रोफेशन संसार का मैं कहूंगा सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर तो नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं उसे, तो जैसा वो लोग मानते हैं उसी तरह हमें जीना है। और इसके लिए आध्यात्मिकता का मेरे जीवन में मैं तो कहूंगा सर्वोच्च सर्वोपरि महत्व है।
क्या बात है, आपकी बातों में पीड़ित मानवता के प्रति संवेदनाएं हैं तो विश्व कल्याण के प्रति शुभ भावनाएं भी समाई हुई हैं। परंतु जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके अपना जीवन सफल बनाया है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन खानपान संबंधित कुछ कठिनाइयों के कारण इस संस्था में आने से हिचकिचाते हैं। क्या वाकई में खानपान का ये परहेज आवश्यक है?
जी देखिए, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, तो अध्यात्म का तो लक्ष्य ही है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आपने सुना होगा कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन।
हाँ जी।
और आज तो हेल्थ इंडस्ट्री भी इस चीज को मानती है कि यू आर व्हाट यू ईट।
जी।
तो फूड जो है, इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है और वो अपनी बीमारी को बताता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिखकर देता है, साथ ही साथ कुछ परहेज भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज का पेशेंट है, डॉक्टर के पास आता है, फिजिशियन के पास आता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां लिख के देता है, साथ साथ कुछ परहेज भी कहता है कि भैया आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको डेली वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। अगर वो मरीज वो दवाइयों के साथ साथ उस परहेज को भी फॉलो करता है तो उसकी शुगर ज्यादा कंट्रोल में होगी, उसका सेहत अच्छा होगा, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो उसको चांसेस है वो कम रहेंगे उसके। अगर कोई दूसरा मरीज है कि जो कि परहेज नहीं करता, खाली दवाई खाता है बस पर परहेज नहीं करता, तो ये नेचुरल सी बात है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें बीच बीच में बहुत हलचल होगी, बहुत गड़बड़ होगी, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये संस्था में भी जो भी यहां आते हैं, अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को परिभाषित करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण स्वास्थ्य किसी के पास भी नहीं है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये एक हॉस्पिटल भी है, जो भी यहाँ व्यक्ति आते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ होने का लक्ष्य है। तो इसके लिए उनको ये जो परहेज है, ये जो खान पान है, तो ये परहेज है, इसके लिए जरूरी है।
आपने एक पेशेंट का उदाहरण दिया और अभी अभी आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल भी है, तो इस संस्था में आने वाले क्या किसी किस्म के बीमार हैं?
जी, मैं आपको यही कह रहा था कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य इज देयर इज नॉट जस्ट वन डायमेंशन। आज तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इसके देयर आर फोर डायमेंशन। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आध्यात्मिक। केवल कोई रोग न होना अर्थात स्वास्थ्य होना नहीं है। भले कोई बहुत अच्छा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बट डज दैट मीन दैट ही इज मेंटली स्टेबल? चलो मेंटली भी स्टेबल है, व्हाट इज हिज सोशल इंटरेक्शन, इज ही सोशली हेल्थ हेल्दी? और सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये सब होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आज दुनिया में दुख है, अशांति है, हमारे पास इतने सारे साधन है परंतु फिर भी व्यक्ति खुश नहीं है अंदर से। जो खुशी है वो एक जैसे कि एक दिखावा है, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं इज अ मिसिंग लिंक।
जी।
तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द इंस्टीट्यूशन इज दैट दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी कि वी टीच द सोल्स टू बी सोल कॉन्शियस, जिससे उनमें प्यूरिटी आती है और उस प्यूरिटी से ही सुख और शांति आती है। तो अगर इस रीति से देखा जाए तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है एक रीति से मानसिक रोग नहीं है या फिर स्पिरिचुअली दे आर डिसीज्ड बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस एंड रियल पीस। तो हमारा तो लक्ष्य ही है कि उन्हें परहेज तो बताना ही है, क्योंकि बिना इन धारणाओं के वो उच्च प्राप्ति हमें कभी नहीं हो सकती।
तो किस तरह के परहेज रखने पड़ते हैं?
अगर आप खानपान की बात कह रहे हैं तो इस संस्था में जो भी तामसिक अन्न है, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, अंडे है, बीड़ी है, सिगरेट है, नॉनवेज है, मांसाहार है, ये सब चीजों की हम परहेज रखने के लिए कहते हैं।
जी डॉक्टर सचिन, मगर कुछ लोग शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मांसाहार को बहुत उपयोगी मानते हैं। हमारे बीच में काफी दर्शक मौजूद हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं अगर इनके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित।
नमस्कार, मेरा नाम लव है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रोज जिम जाता हूँ, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं मांसाहार लेता हूँ, तो क्या ये सही है?
जी, आप जिम जाते हैं और आपका लक्ष्य है कि आपका शरीर शक्तिशाली हो, तो ये जो मान्यता है कि मांसाहार खाने से शरीर शक्तिशाली होता है,
दुनिया में कहावत भी चलती है मांस खाए मांस बढ़े, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं।
जी जी जी, तो इस विषय में हमको अपने शरीर के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह की उसकी बनावट है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है और जो पशुओं में जो प्रोटीन है इसमें बहुत विसंगति है। ये जैसे कि वो प्रोटीन हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये लंबी अंतड़ी वाला है हमारा मनुष्य का जो शरीर है, और जो दूसरे जो एनिमल्स है जैसे लायन है डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है ये छोटी है। तो ये जो लंबी अंतड़ी वाला हमारा जो इंटेस्टाइन है, ये कभी भी इस तरह का जो भोजन है मांसाहार उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये भोजन वहां आता है, फिर वो पुट्रीफाई होता है और उसमें टॉक्सिंस निकलते हैं और वो वहीं पर सर्कुलेट होते हैं।
जी,
तो इससे, और अभी तो मान्यता ये है कि बहुत सारी जो बीमारियां है ये मांसाहार से बढ़ रही है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो जितने भी मरीज हैं उनको तो हम आजकल ये कहते हैं कि भाई आप अगर ये ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनको छोड़ो, अगर कोई तुरंत छोड़ सके तो भी उसको छोड़े। दूसरा, एक बहुत सुंदर रिसर्च इस नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा रिसर्च और शायद कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो रिसर्च है इतना बड़ा रिसर्च हुआ, ये हुआ था लगभग 70s एंड 80s के बीच में।
जी।
एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, लुमा लिंडा यूनिवर्सिटी, तो उसमें लगभग 10,000 लोगों को लिया गया।
जी।
और उन पर ये प्रयोग किया गया कि उनको सात्विक आहार खिलाया गया, वेजिटेरियन डाइट दिया गया।
जी।
और इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था वो ये था, बहुत ही चौंकाने वाला जो निष्कर्ष था, कि जिनको शाकाहारी भोजन दिया गया उनकी आयु बढ़ गई। और ये स्टडी ऐसा था कि पहले तो खाली 10,000 लोग, फिर बाद में बाय द एंड ऑफ द स्टडी अबाउट 96,000 पीपल गॉट अटैच टू दिस स्टडी। और जो रिसेंट में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फिलाडेल्फिया में कि न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स की, उसमें ये जो स्टडी है ये प्रेजेंट की गई, और उसमें कहा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन इज मोर अबाउट 6.5 to 9.5। मोर देन दैट, उनका जो ओबेसिटी, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें ओबेसिटी की मात्रा कम है। और तीसरा और एक जो फिगर उन्होंने, जो एक पैरामीटर उसमें अटैच किया होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि भाई बीमारी है डायबिटीज की, इंसुलिन दवाइयां काम करना बंद कर देती है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये बहुत कम होता है। तो ये जो स्टडी था, दिस इज रियली अ वेरी गुड स्टडी, कि दैट शोज यू दैट कि वेजिटेरियन डाइट। और दूसरी एक बात, क्या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हमेशा मांसाहारी करता है? कभी तो वो शाकाहार करता ही होगा।
हाँ जी।
समटाइम्स ही हैज टू टेक, बट for a person to remain vegetarian he doesn't require to be non-veg, he can remain vegetarian whole life।
जी, जी,
और
जी,
आप देखेंगे मांस में है क्या, it contains proteins।
हाँ जी।
उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है। वेजिटेरियन डाइट है उसमें फाइबर्स होते हैं, दैट इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। उसमें कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बाकी जो मांस है उसमें देर इज नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स। और दूसरी एक बात, ये तो मैंने आपको कुछ मेडिकल व्यू पॉइंट बताया, पर इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। जैसे अगर धार्मिक पहलू ले लिया जाए,
हाँ जी,
तो किसी भी व्यक्ति की हत्या करना,
हाँ जी,
दया धर्म का मूल कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। यहां तक तो ये वो संस्कृति है जहां पर एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है भारतीय सभ्यता में,
किसी भी जीव की हत्या करना
ये तो पाप समझा जाता है। अच्छा चलो, कभी आपने उन जानवरों को देखा है कि जिनको अभी मारने जाने वाले हैं, किस प्रकार के भाव उनके अंदर होते हैं, उनकी वो चीख, उनकी वो पुकार, उनका वो दर्द, उनकी वो वेदना। आपने कभी उस गाड़ी को देखा है कि मुर्गी वाली गाड़ी, जाली वाली गाड़ी होती है, अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं कि उनको लेके जा रहे जाते हैं, वो मुर्गियां आप देखेंगे अपनी चोंच बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि दर्द है उनमें। और एक मैं बहुत अच्छी बात जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है कि दिल्ली के 3 साइंटिस्ट जो है भारत के वैज्ञानिक, उन्होंने एक 20 साल तक एक बहुत सुंदर खोज की और उन्होंने पाया, उन्होंने क्या किया, जितने भी कत्तल खाने हैं
जी,
बहुत सारे कंट्रीज में वो लोग घूमे और उन्होंने एक रिसर्च किया कि देखा कि जो ये कत्तल खाने जहां पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, और वहां पर उन्होंने शॉक वेव्स की स्टडी की, तो उन्होंने पाया उन उन स्थानों पर भूकंप की संख्या ज्यादा है, भूकंप ज्यादा अनुपात में आते हैं। मतलब दे हैव स्टडीड वो जो चीख और पुखार है जानवरों की, उनके वजह से ये जो धरती पर भी कुछ असर हो रहा है। दिस इज रियली अ न्यू स्टडी विच हैज कम अप विच दे आर टेलिंग कि वेयर द परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस। आपने एक रिसेंटली जापान में क्योटा करके एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योटा प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। वहां पर वॉट दे हैव कंक्लूडेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीजन उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट बताया है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खाना है उसमें आप देखो, जब जानवर को मारा जाता है तो उसके जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं। और जो जानवरों का जो मांस है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो जानवरों को पहले पाला जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्शन से उनको अच्छा तगड़ा बनाया जाता है, दे माइट बी कार्सिनोजेनिक, और फिर उसको खाया जाता है। और जो भी भोजन है, जो मांस है, उसका आप अगर देखो जो फ्रेश मांस है उसका कलर कुछ और होता है, और जो अवेलेबल होता है उसका कुछ और होता है, उसमें भी वो लोग केमिकल्स डालते हैं। तो ये जो पीरियड है मांस बनना और खाना, उसमें बहुत बड़ा गैप है, एंड देयर इज एवरी चांसेस दैट दिस मीट कैन गेट इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। तो ये भी मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर आप अगर देखो, आपको अगर मांस आप खा रहे हो तो साथ में ये सारे वो जानवर के वाइब्रेशंस, उसमें वायरसेस, और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम खा रहे हैं। और आपने जो बात कही कि भाई शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज ये सारे जो तथ्य मैंने आपको बताए इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी है उन्होंने भी जैसे कि अभी वेजिटेरियन डाइट चालू कर दिया है
जी।
तो इस तरह से मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है, मैं तो कहूंगा इससे जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति, हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम ऐसी चीज नहीं खा सकते कि जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर भी विपरीत परिणाम डाले
जी। और किसी प्राणी को दुख पहुंचाना, तो हम सुख की कामना
कर ही नहीं सकते, किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते
जी। और भारत की मान्यताओं और मैथोलॉजी पर भी गौर करें तो हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताया
जी, जी जी
और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं
जी। मैं इसमें एक छोटा सा एक बात बताऊंगा कि जो आपने श्री रामकृष्ण परमहंस की बात तो सुनी होगी
जी।
उनके पास एक व्यक्ति हमेशा आता था जो कि काली का जो मंदिर था वहां पर वो बकरा मतलब बलि चढ़ाता था
जी।
तो कुछ साल वो आया ही नहीं, तो अचानक एक दिन आ गया, तो रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों आजकल तुम बलि नहीं चढ़ाते? तो उसने कहा क्या करूं, दांत नहीं रहे ना। मतलब जो ये कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? देवी को प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी स्वाद लोलुपता जिसको कहेंगे
जी, जी जी।
हम नाम तो उनका ले रहे पर कर किसके लिए रहे? अपने लिए। मतलब ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जो जबान है केवल उसकी संतुष्टि के लिए हम किसी जानवर को मार रहे। और दूसरी एक बात, क्या हमारा ये पेट कब्रस्थान है कि हम इसमें मुर्दों को डाल रहे? तो ये सोचने की बात है
जी।
कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो लोग कहते हैं कि ये जो जानवर है उनमें फीलिंग्स नहीं होती। अगर मछली का ही उदाहरण लिया जाए तो सबसे ज्यादा रिसर्च मछली पर हुआ है। जैसे शार्क फिश को ले लो, वेल फिश को ले लो, डॉल्फिन्स को ले लो
जी।
तो अगर ये जो फिश ऐसी है कि इन्होंने देखा, इसमें देखा गया है कि अगर कोई आदमी डूब रहा है तो देखा गया कि डॉल्फिन फिश ने उसे बचाकर किनारे पर लगा दिया है। तो वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि इनकी जो आईक्यू है वो लगभग इंसान की जितनी आईक्यू है उतनी है
जी। और बिना एहसासों के तो ये हो ही नहीं सकता।
तो ये इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एनीथिंग दैट मूव्स, दैट फ्लाइज, दैट स्विम्स, दैट वॉक्स, वी डोंट ईट। ये हमारी संस्था का परहेज है
दोस्तों। खान पान से और परहेज से संबंधित इतनी अहम और नई जानकारियां हमें मिल रही हैं, और मांसाहार शरीर के लिए अनुपयुक्त है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बस औरों को देखा और फॉलो करते चले गए। डॉक्टर सचिन, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और इतनी रिसर्चेस की बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ शेयर की। मैं अपनी और दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो दोस्तों, ये 2.5 इंच की जुबान इसके स्वाद के प्रति हम इतना गुलाम हो गए कि हमने खान पान संबंधित असल धारणाएं ही छोड़ दी। लेकिन खान पान संबंधित अभी कई और प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप जरूर जानना चाहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम ऐसे प्रश्नों के समाधान के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।
किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो इस संस्था से अवश्य जुड़ सकता है, यहाँ तक कि वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो।
लहसुन प्याज शाकाहारी है, इनको यूज करने में बुरी बात क्या है?
हमारे शरीर में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हर चीज जो हम खाते ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तो ये जो केमिकल है ये इस बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जाता है।
आपके तर्कों से नहीं जीत पाएंगे।
मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ।
ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो ये पूरे ही शांत हो गए।
क्या यह आपका व्यवहार उचित है?
उसको डायबिटीज की बीमारी है और आपने उसके लिए खास मिठाई बनाई है।
एक बात और ऐड करना चाहूंगा इनके प्रश्न में मैं, कि आप किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते, ये क्या कारण है?